मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 3 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं तालिबान और अमेरिका के बीच में जो एक समझौता हुआ है, जो बहुत ही विश्व स्तर का समझौता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। लेकिन घटनाओं से पहले, खासकर आज मैं सभी स्टूडेंट को संबोधित करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देने जा रहा हूं। मित्रों, सलाह यह है कि आप सब जानते हैं कि UPSC के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और शुरू हुए काफी 3 सप्ताह तो लगभग होने को आए, 2 सप्ताह तो हो ही गए हैं, हम थर्ड वीक में एक तरह से एंटर कर चुके हैं। मैं आप सबको एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस देना चाहूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि इस एडवाइस को स्वीकार करना आप सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें पूरा एक दिन खराब हो जाएगा। अंडरलाइन में कह रहा हूं, खराब हो जाएगा। पहली बात तो यह कि आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका एक दिन खराब हो जाएगा। देखिए, आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते रहें। ठीक है, पढ़ाई की एक सीमा है और वो आप कर भी लेंगे, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से है, और मैं जो भी बात कह रहा हूं उसका इसका संबंध उसी से है जिसे आप इंटरव्यू कह सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी दिल्ली में हों या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के हों, या जिनके लिए भी संभव हो सके, इंटरव्यूज लंबे समय तक चलेंगे, या किसी वजह से आप दूर भी रह रहे हैं लेकिन बीच में आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो प्लीज अपने प्लान में आप एक काम को जरूर शामिल कर लीजिए, और वह यह कि आप UPSC के दफ्तर जाइए। सुबह आप UPSC के ऑफिस पहुंच जाइए, शाहजहां रोड पर UPSC का ऑफिस है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उस ऑफिस को देखने के बाद आप बड़ा रोमांच का अनुभव करेंगे कि ओह, काश कि एक दिन ऐसा आए जब मुझे इसके अंदर प्रवेश करने का मौका मिले, यानी कि इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया जाए। बहुत खूबसूरत जगह है, चौड़ी सड़कें हैं, सड़क के दोनों ओर घने वृक्ष हैं, और अभी तो आप उस एरिया में जाएंगे ना तो जगह जगह आपको फूलों की बहार दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप बगीचे के अंदर हैं, हालांकि आप बगीचे में नहीं होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप दिन भर का प्लान बना के जाइए, राइट। वहां अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वहां खूब सारे ठेले वेले हैं, आसपास में होटल भी हैं, आप खा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां आपको किताबों की दुकानें भी मिल जाएंगी जो फुटपाथ पर लगी रहती हैं, और वो जो किताबें होती हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से संबंधित है, तो वो भी आपका एक पर्पस पूरा हो सकता है। मेरा जो मकसद है आपको बताने का, अभी तो मैंने केवल लालच देने की बात कही है ताकि आपके मन में थोड़ी सी एक जिज्ञासा पैदा हो जाए कि नहीं नहीं यार, मुझे जाना ही चाहिए, और क्या क्या बता रहे हैं सर, हम जरा ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जैसे ही कहा कि मैं कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा यार चलो अब देखते हैं, सुन लेते हैं, क्या करें, मुझे मालूम है। लेकिन मित्रों, इस एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलिए प्लीज। आप जाइए, और फिर जो स्टूडेंट इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, वो आपसे बात नहीं करेंगे, और फिर आप उनसे पूछेंगे भी क्या, उनके दर्शन कर लीजिए। अगर आप उनसे प्रभावित हैं तो बस दैट्स ऑल, दर्शन करने के लायक तो हैं, देखिए उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, मजाक तो नहीं है। जब वो इंटरव्यू देकर निकले तब आप उनसे पूरी विनम्रता के साथ बात कीजिए, मैंने कहा पूरी विनम्रता के साथ बात कीजिए, और उनके अनुभव पूछिए, अनुभव इंटरव्यू के, और अगर आपकी दोस्ती थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आगे भी पूछिए कि मेंस की उन्होंने तैयारी क्या कैसे की, कैसा रहा, कितने मार्क्स वो उम्मीद करते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न है तैयारी को लेकर के, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बहुत सही सलाह देने की स्थिति में होंगे। और खासकर इंटरव्यू के बारे में तो पूछिए ही पूछिए। देखिए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट आपसे बात न करना चाहे, कुछ एरोगेंट आपको लगे, कुछ आपके बात को आउटराइट रिजेक्ट कर दे, तो उसे हताश मत होइए, निराश मत होइए, अपने को रिजेक्ट किए जाने की भी हिम्मत रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे बात करे, आपका अधिकार नहीं है इस उन पर, है ना, तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत आप नहीं है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये नहीं कि यार यार वो तो बताते नहीं है तो चलो छोड़ो, अपना वापस चलो बेकार के यहाँ आगे, पढ़ाई नुकसान हो रहा है, इसके बदले में हम पढ़ लिए होते। आप इस एटीट्यूड को बदलिए, UPSC की तैयारी के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी बदलिए। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, दोपहर के बाद फिर से इंटरव्यू शुरू होते हैं। आप कुछ लोगों से बातें कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इससे आपको टोटल कितना फायदा होगा। टोटल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये मत समझिएगा कि इससे आपको सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए फायदा होगा, नॉट एट ऑल, आपको टोटल में बहुत फायदा होगा। और ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है जो साल में एक बार कुछ समय के लिए आती है, और आप लोगों को चाहिए कि आप इस रेयर अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाएं। अब आखिरी में मेरी एक रिक्वेस्ट ये कि अगर आप ठीक समझते हो और इतनी थोड़ी सी मेहनत करने की तकलीफ उठा सकते हो, तो मुझे यह लिखकर भेजने का कष्ट करें कि स्टूडेंट से किन किन टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए, किस किस तरह के प्रश्न किए गए, और आपके उन प्रश्नों को मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से अपने प्रिय श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को इसी स्टेज पर ये पता लग सके कि इंटरव्यू में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे उन्हें अगली तैयारी के लिए बहुत मदद मिल सकेगी। तो इनडायरेक्ट में आप उनकी भी मदद कर रहे होंगे, जाकर आप अपनी मदद तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दूसरों की भी मदद कर रहे होंगे। मित्रों, मुझे यकीन है कि कुछ स्टूडेंट तो जरूर मेरे इस निर्देश का पालन करके मुझे पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराएंगे। आइए अब मैं पहले कुछ दूसरी घटनाओं के बारे में आपसे बात करता हूं। मैंने इससे पहले आपको COVID-19 के बारे में बताया था, तो मुझे कुछ मेल मिले हैं, तो उसमें शायद मैं कोविड का के शब्द मैंने यूज किया था, शायद नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। तो यहां मैं थोड़ा सा करेक्शन आपको बताना चाहूंगा, ये के नहीं है, ये सी है, COVID-19। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये COVID-19 यानी कि सी से शुरू होता है, जो अब कोरोना वायरस के नाम से काफी पॉपुलर इससे पहले ही हो चुका है। दोस्तों, आज के आपने अखबारों में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह वो सोशल मीडिया को छोड़ने का विचार कर रहे हैं, ट्विटर पर अपने अकाउंट बंद करने जा रहे हैं, और जो दूसरे भी होते हैं, यूट्यूब है और क्या क्या। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, जनरली इस पर बात होती रहती है कि सोशल मीडिया लोगों का बहुत समय खराब कर रहा है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये सब चीज़ों पर बात होती रहती थी, लेकिन यदि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप मान करके चलिए कि जो सोशल मीडिया है वो आपके मेन एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण यह विषय बन चुका है। इस पर आपकी तैयारी ठीक ठाक होनी चाहिए। एक खबर आप लोगों ने और भी सुनी भी है और आज के अखबारों में पढ़ी भी है कि किस तरह से निर्भया कांड में जो चार दोषी पाए गए हैं उनका डेथ वारंट जारी कर दिया गया था, आज उन्हें फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन वो टल गई। अब ये एक घटना है और घटना का कोई मायने सच पूछे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से सीधे सीधे नहीं होता। इसका जो अर्थ होता है वो ये कि इस घटना के माध्यम से अब सवाल क्या उठ रहा है, विचार क्या हो रहे हैं। तो विचार ये हो रहे हैं, क्या हमारी सच में जो न्यायिक व्यवस्था है इतनी पोली है, ढीली ढाली है, कि इतने जघन्य अपराध के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक द्वारा दी गई सजा को इस तरीके से बार बार टाला जा सकता है, और यदि उसमें इतने इस तरह के लूप होल्स हैं तो क्या उन लूप होल्स को दुरुस्त नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर हम साफ देख रहे हैं कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो कुछ इस तरह की है कि यदि कोई चाहे तो बकायदे इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। अब ठीक है, वो किस सीमा तक उठा सकता है वो एक बात अलग है कि अंतिम परिणाम क्या होगा। तो ये न्यायिक व्यवस्था के आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं बीच में जो उसकी खामियां रह गई हैं उसको प्रदर्शित कर रहा है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि प्रश्न बन रहा है। मित्रों, आज के अखबार में मैंने एक शब्द पढ़ा है, एक बहुत अच्छा शब्द है, नया शब्द धीरे धीरे यह प्रचलित हो रहा है, अनलाइकली हैंडशेक्स। अनलाइकली हैंडशेक्स, हैंडशेक्स का मतलब जब आप हाथ मिलाते हैं। अनलाइकली का मतलब वही है कि कोई असंभव सा समय है या आप नहीं मिलाना चाह रहे हैं, या अंग्रेजी का शब्द है। ये किस सेंस में आया है, देखिए आप देख रहे हैं जो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो कोरोना वायरस में यह है कि आप हाथ मत मिलाइए, हाथ धोइए, संक्रमण होता है इससे, है ना। अब भारतीय परंपरा ये है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, हमें हमारे यहाँ प्रणाम करने की परंपरा, हम हाथ जोड़ते हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे वही कारण हो कि मेरे हाथ का संक्रमण आपके हाथ में न जा पाए, तो हम अपना हाथ मिलाते हैं। यहां जो इस शब्द का प्रयोग किया गया है वो ये है कि अब ये बहुत बेहतर समय है, क्योंकि अब जो है ये देखिए किस तरह से लिया जा रहा है कि एक देश अब दूसरे देश से व्यापारिक मामलों में हाथ नहीं मिलाएगा, तो फिर क्या करेगा? इसका मतलब है कि वह अपने यहां ही उत्पादन करेगा। जैसे हमारे यहां मान लीजिए कि स्मार्टफोन या दूसरी चीजें चीन से आ रही हैं, हमारे तो गणेश जी की मूर्तियां और उड़ाने वाले पतंग और आपके दिवाली में लक्ष्मी की मूर्तियां चीन से आती हैं, सोचिए। तो ठीक है, ये जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं भैया चीन से आप मत मंगाइए, क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है, बीमारी हो सकती है, और ये हाथ मिलाने से फैलती है ना, दूसरा संक्रमण हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने ही लक्ष्मी बनाएं, अपने ही गणेश बनाएं, अपने ही पतंग बनाएं, अपने ही मोबाइल फोन बनाएं, जो कुछ भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं स्वदेशी की तरफ दुनिया को ले जा रहा है, मतलब हम स्थानीय प्रोडक्ट को ही अपनाएं और स्थानीय प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इस सेंस में धीरे धीरे अब ये शब्द प्रचलित हो रहा है, अनलाइकली हैंडशेक्स। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और अपने उत्तर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से भाषा आपकी समृद्ध होती है और एग्जामिनर को लगता है कि आप सच में कितने सही और बिल्कुल जो अपडेट लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मेरे पास अब इतना समय नहीं रह गया है कि मैं मुख्य विषय के बारे में विस्तार से बातें करूं, तो मैं इस विषय पर डेफिनेटली कल विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं आपको केवल एक तथ्य बताना चाहूंगा, और दोस्तों ये तथ्य ये है कि तालिबान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के केंद्र में ये है कि अभी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज है, और अमेरिका ये कह रहा है कि ये हमारी शर्तें हैं, और अगर हमारी आप ये शर्तें मान लेंगे तो हम अपनी फौज वापस बुला लेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि अमेरिकी फौज क्यों है, उसकी मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। यहां मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि यह जो एक घटना है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात किस एंगल से महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा प्रमाण है वो 2013 का जो मेन एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है, वह है। क्या प्रश्न पूछा गया था मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, इसे फिर इस घटना पर आप अप्लाई कीजिएगा। प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ूंगा और शायद इतना ही वक्त रह गया है। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल ISAF की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिए बड़े खतरों से भरा है, ब्रैकेट में दिया सुरक्षा उलझनों से भरा है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियां हैं तथा उसे अपने सामरिक महत्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। 200 शब्द मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। द प्रपोज्ड विथड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2014 इज फ्रॉट विथ मेजर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्रीज ऑफ द रीजन। एग्जामिन इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज फेस्ड विथ ए प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस एंड नीड्स टू सेफ गार्ड इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। देखिए इससे क्या आपको जाहिर हो रहा है, देखिए इसमें दिया है ना 2014, मैंने कहा है 2013 का पेपर था, तो ये मत समझिएगा कि कुछ गलत कहा जा रहा है, क्योंकि संधि में है ना, अभी भी अमेरिका ने कहा है ना कि आप ठीक है ये मानते रहिएगा तो आने वाले 14 महीनों में, इतने महीनों में जो है हम अपनी सेना वापस करेंगे, तो वहां भी यही बात थी लगभग। तो इसलिए 2014 की बात कही गई है। अब आप देखिए कि इसमें दो चीज देख रहे हैं आप सीधे सीधे कि यहां अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कुछ सेना है, उस सेना की वापसी के लिए ये समझौता किया गया है, ठीक है, ये घटना हुई। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया वो तो एक स्थिति बताई गई है, प्रश्न तो सेकेंड पार्ट में है ना, उसमें कहा गया भारत। बिल्कुल दोस्तों, यही स्थिति अभी तालिबान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसकी है। तो अब आप किस एंगल से इस प्रश्न की तैयारी करेंगे इस टॉपिक पर, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बारे में अब मैं कल बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि आज वक्त नहीं है और इसके लिए पर्याप्त समय की जरूरत होती है। तो मित्रों, इसलिए अब मुख्य विषय को अब यहीं समाप्त करते हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है, आप अपनी सब जरूरतों के हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, प्राची देमरी, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। प्राची, तुमने जिन शब्दों में आभार व्यक्त किया है उसके लिए मैं अपनी ओर से, पूरी टीम की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। संदीप अख्तर चोपड़ा वेस्ट बंगाल से, बैजनाथ, अनिल कुमार सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश से, प्रियंका अहिरे पुणे से और आकृति गांडली झांसी उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।